चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बताया, पहले शुक्रियों से साधु संत हो गया और फिर साधु संत के बाद स्वभाव उत्पन्न हो गया, उसके बाद में पूरा साधु संत हो गया। दूसरी बात, उस साधु संत से भगवान के परम प्रिय भक्त गुरु का चरणाश्रय करना आवश्यक है और उनकी विषम रूप में सेवा करनी जरूर है। वो बोध करता है और बोध करने पर वो सदगुरु पदाश्रय है और फिर उनसे शिक्षा दीक्षा भजन शिक्षा प्राप्त की जाती है, सदाचार की शिक्षा भी उनसे की जाती है। इसके द्वारा स्वजाति आश्रय स्वीकार एवं भक्ति पद में अभिज्ञ गुरु या साधु के संग का सौभाग्य पैदा होता है और फिर उनके निर्देश में भजन करने से अनुभक्ति इत्यादि होकर के प्रेम भजन पर फल प्राप्त होते हैं। तस्मात् गुरु प्रपत्ते जिज्ञासु से उत्तम साधे परिचर के सनातन ब्रह्म ग्रंथ प्रसमान। इसलिए जो अपना परमार्थिक कल्याण चाहते हैं, जाना लिए परमार्थिक कल्याण क्या है, सदगुरु शरण सदगुरु पवा भगवान अपेक्षा गुरु दूर रहो। और ऐसा गुरु मिल जाए, साधु मिल जाए, समझो कि भगवान मिल गए, उनकी कृपा से जल्दी ही प्रेम होगा और भगवान की प्राप्ति हो जाए। गुरुदेव ऐसा जो सब प्रकरण है, श्रुति शारदा शास्त्र में पारदर्शी विद्वान है। आखिर श्रुति वेद उपनिषद पुराण भागवत गीता इत्यादि शास्त्रों में पारदर्शी, जिससे कि शिष्य के किसी भी प्रकार के संदेह को दूर कर सकते। साथ ही परम ब्रह्म में निष्ठा की होनी चाहिए, परम ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्व ज्ञान भी होना चाहिए, जिसे कि अनुभव के द्वारा अपनी बातों को शिष्य को बता। शास्त्र की बात पीछे, गुरु शिष्य को अपने अनुभव की बात बतला करके भक्ति राज्य में उसको प्रवेश कर सब जगह है। नारद जी ने अपनी अनुभूति व्यास जी को गोप कुमार भी धन शर्मा को अपनी अनुभूति बतला करके और फिर कार्य तात्पर्य की महत्कृपा द्वारा जो श्रद्धा प्राप्त हो धारण महत्व का प्राप्त के सदगुरु के महत्व এই সব লক্ষণগুলি তার মধ্যে হওয়া চাই। বেদ আর বেদকে তাৎপর্য জ্ঞাপক শ্রীমৎ ভাগবত আদি শাস্ত্র মে পারদর্শিত দুঃসাহসিক প্রমাণ আর যুক্তি কে দ্বারা শিষ্য কে সংশয় উচ্ছেদন করতে যারা সুদৃঢ় বিশ্বাস আর সুদৃঢ় নিষ্ঠা সঙ্গে ভগবানের ভজন করে কিছু অনুভূতি লাভ করেছে এমন গুরু যে গুরুপুর ভজন করে নাই শাস্ত্র ইত্যাদি সব দেখেছে গুরু দ্বারা হবে যারা অনুভব করেছে কিছু সাধন ভজন করেছে কিছু গুরুকে তার উপলব্ধি করেছে এমন সত্যি যারা ভগবান কি কৃপা ভগবানের কৃপা শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অপরোক্ষ অনুভূতি প্রাপ্ত অপরোক্ষ শিষ্য হৃদয় তিনি শক্তি সঞ্চার উত্তম অধিকারী যদি হয় তোমার পূজা হয়ে যায় মধ্যম অধিকারী সঙ্গ প্রদান করে নিজের শিক্ষা দ্বারা ধীরে ধীরে ভক্তি তার দিতে যিনি কাম ক্রোধ লোভ আদি এই চারটি লক্ষণ যাতে বিদ্যমান তিনি সদ্গুরু এইরকম সদ্গুরু দেখে তারপর তাকে অন্যদিকে গুরুরূপে যে পরিচয় যারা দিবে দেখতে হবে জন আর গুরু থাকলেও যদি উপযুক্ত চারটি গুণ না থাকে তাকে গুরু করবে ব্রাহ্মণ কুলের যে জন্ম শাস্ত্র আর বাকিগুলি গুণ যে কৃষ্ণ তত্ত্বে তার সেই গুরু অতএব মহাপ্রভু নিশ্চিত এই গঠনের দ্বারা প্রমাণিত হয় সদ্গুরু কৃষ্ণ তত্ত্বে এই কৃষ্ণ তত্ত্ব মহাপুরুষের দীক্ষা দ্বারা মন্ত্র দ্বারা জীবের প্রসাদ ভগৎ প্রাপ্তি এই হচ্ছে প্রথম অঙ্কুরানুকু এই দীক্ষা একদিনে হয় না বিশেষ করে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা ওই দিন থেকে আরম্ভ করে রতি ভাব উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত এই দীক্ষা চলছে যেদিন থেকে দীক্ষা হল ওই দিন থেকে আরম্ভ হল কি যাতে পারমার্থিকই দীক্ষা তার হয় ওই পর্যন্ত এইখান থেকে আরম্ভ করে করতে 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 দীক্ষা হবে দিব্য জ্ঞান ওই রতি শুদ্ধ বিশেষ বিশেষ শুদ্ধ সত্য বিশেষ ওইটা হ্যাঁ সে অনুভব করবে তার স্বরূপের উপলব্ধি হবে প্রসাদ गुरु पदाश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षा गुरु पदाश्रय और कृष्ण मंत्र में दीक्षा गुरु पदाश्रय ने हरिनाम ग्रहण किया और कृष्ण मंत्र की दीक्षा तात्पर्य भागवत धर्म आदि शिक्षा विश्वासपूर्वक विसंवेग गुरु सेवा गुरुदेव सेवा एतद् द्वारा गुरु पदाश्रय गुरु मंत्र लिए बिना बस आक्रमण से बंधन है एतद् द्वारा पूर्णांग हो गए ना जैसे बोल रहे गुरु पदाश्रय दीक्षा अपनी स्वास्थ्य पूर्व गुरु देव सेवा फल सदाचार आदि संबंध है शिक्षा इत्यादि ग्रहण दीक्षा पूर्ण अभिराज को संदेश गुरु पदाश्रय दीक्षा गुरु और सेवा तात्पर्य दीक्षा मंत्र ग्रहण में पूर्व इच्छा रहने पूर्व गुरु समीप आकर तन मन वचन से गुरु को प्रसन्न करना चाहिए प्रणिपाते प्रश्न सेवा तब ही अनुग्रह करे अतः दीक्षा को प्रसन्न करते हैं गुरु प्रशक्ति बोले यहाँ के गुरु और शिष्य परस्पर स्वभाव लक्षण इत्यादि परीक्षा गुरु शिष्य के देखते किसे जन्म माता से बढ़े हरि भजन जन्म न करो लौकिक स्वास्थ्य और शिष्यों तक के गुरु के आचरण की तत्व जाने की ना भगवान ने कुछ अनुभूति रखे की ना संसार में असक्ता आचरण कार्य के दिया देखे त्रुटि है छड़े पर संतुष्ट हुए अशिष्य गुरु संतुष्ट हुए साधारण भाव नाम उपदेश दिया जाए जय नाम करो किंतु तीव्रता का परिणाम देखा तो होती है परीक्षा करे तार करे गुरु ग्रहण करा तो गुरु शिष्य ग्रहण करा एक महामूल्यवान फल एक निष्कपट सेवा के द्वारा संतुष्ट परम कृपा कर गुरु पाद पद्म से यथार्थ दीक्षा होती है तखन के लिए यथार्थ परमार्थ शिष्यों के लिए यही परम पुरस्कार एक ही शिष्य गए परम पुरस्कार ऐसा नहीं से गुरु और शिष्य भजन के पद में बाधा है क्या बाधा बीच में यदि गुरु को देखा जाए कि गुरु नहीं और पहले ही कर लिया शिष्य और पीछे मालूम पड़ा जैसे ये विष्णु का संग करता है व्यभिचारी है भगवान का भजन का कुछ नहीं जाता ऊपर से चिन्ह बना रखा है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है और शिष्य भी देखे शिष्य को नहीं परीक्षा करके देखा तो वही शिष्य जो स्वार्थी होगा सब समय भक्षण उत्पन्न करेगा गुरु को शांति नहीं रहने इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा है बहुत शिष्य पर देना पूर्व में लोग ऐसे है परीक्षा द्वारा आता है मन उत्पाद गुरुदेव दिन रात चिंता भजन की करते for the perception. এই জন্য পরীক্ষা করে দেখে ভালো ভাবে আজকাল তাই হচ্ছে অনাধিকারী সিস্টেম পরিণাম শিক্ষায় আবার পরে গুরুদেবের জন্য মহাপন্ত গুরুদের যদি বৈষ্ণব ভাব না থাকে তাহলে শিষ্যের হাজার কোন সিদ্ধি হবে না। সদ্গুরু তাহার যদি শুদ্ধ পাওয়া গেল না ভজন পারায়ণ অনাসক্ত ভগবত শিষ্যের পূজের পর শিষ্যের প্রধান স্ত্রী তার জীবন বেকার হয়ে যাবে। Otherwise, only Buddha knowledge will not be sufficient to nourish the faith of the disciple.
such as Sadhguru, one will achieve Shraddha or transcendental faith. Therefore, that Guru who is expert in the Vedas and those Shastras which are in line with the Vedas, who by knowledge of Shastra and by logic and argument, he can cut all the doubts in the heart of the disciple. That Sadhguru should have strong faith and realization. That Sadhguru should know by his own realization what does it mean, the mercy of Guru. He himself has attained Kripa Shakti from his Guru, therefore that Sadhguru has the power to nourish the heart of the disciple. Therefore by the association, if the Guru is an Uttamadhikari, most excellent, just by his blessings one can achieve bhakti. And if Sadhguru is a Madhyamadhikar, then he mostly gives his association, and by hearing Harikatha, the disciple will slowly enter bhakti. But if the Guru himself is controlled by lust, greed and other bad qualities, then what to say for that? Even if we see that the Guru appears in a good family, Satkar, Nikano, Vitro, Mantra, Tantrik, Sadaro, but still he has no qualities of Vaishnava, then we should not accept him. Mahaprabhu gave all these instructions clearly. Kimo Vipra, Kimo Nasi, Shudra, Kananoya, Krishna Tattavati, Sei Guru Hoi. Mahaprabhu said, who knows Krishna Tattva, he is Guru, whether he appears in a Brahmin family, a Sudra family, whether he is Sannyasi, or anything. But who knows Krishna Tattva, that is the main qualification for Guru. Therefore, that Mahapurusha, Sadguru, he gives Diksha. And that will cause the first Brahma Bhakti to appear in the heart. Therefore, Diksha is not fulfilled, completed in simply one day. The day that we take mantra from Guru, this is called Anusthanik Diksha. For want of a better language, the formality of Diksha. But that real Diksha, that Paramatic Diksha, or transcendental initiation, will be completed upon this achievement of Bhava Bhakti. Therefore, that Paramatic Diksha, that transcendental initiation, the disciple will realize Dipigyan, what is my relationship with Krishna at the stage of Bhava Bhakti. Srimad Goswami has said, Surasapya Visheshatma Prema Suryam Samriva. At that stage, the disciple can realize his transcendental identity, his Siddha Swarup. This is called Divigyan. Therefore, first three things. We must Guru Parasrai. One must take shelter of the Guru. How? By taking Harinam from him. Then one must take Diksha and Shiksha. That means one will hear Krishna mantra from him. Then one will perform Guru Seva. Therefore, by these three things, by taking Harinam, by taking Krishna Mantra, and by Guru Seva, by these three limbs of Bhakti, one takes shelter at the feet of Sadguru. Therefore, it's not a fact that simply I take initiation, then show up, no relation with Guru, no. We'll have to perform Seva to the Guru with faith, then this process of Diksha will be completed. Therefore, Sri Kaviraj Goswami, he goes even one step further and says, before we take Diksha, one must serve the Guru by body, mind and words. Then when Guru is satisfied, then one should take initiation. In the Gita, Krishna gives the same idea. One must approach the Guru with seva, with inquiry and with surrender. Then Guru will give his mercy in the form of initiation. Therefore, before initiation, there should be a mutual examination. The disciple should examine the Guru. Does he have the symptom of a Sadguru? Is he absorbed in Harivajan? Is he detached from material life? Does he have direct realization? The disciple should examine if these qualities are present in the Guru. And the Guru must also examine the disciple. Has the disciple come for some self-interest, some benefit? Or have they come for Harivajan? Therefore, after both the Guru and disciple examine each other, then the process of Diksha may be undertaken. Therefore, how will we please Guru? We will please Guru by Niskapa Guru Seva, serving Gurudev without duplicity. Therefore, this Guru Seva is to be considered the supreme attainment for the disciple. But sometimes, the Guru may be qualified, but bad fortune, he accepts bogus disciples, Those bogus disciples simply disturb the Guru by going to him and telling many types of histories, oh, he is doing that, he is doing this. Therefore, he simply causes a disturbance to the Guru. Guru, that time, may feel some disturbance in his own bosom. Therefore, Guru Goswami gave more warning, don't make many disciples. Because unqualified disciples simply cause disturbance to the Guru. Therefore, the disciple should do his Guru bhajan parayan, expert in bhajan. Then all these things are given. Both them are given.
तो सरकार करेगी तो
मरना मुझे भेजना हो भूल भाई है आज सभी कुछ हो गई है और गुरुदेव आगे शासन कर रहे हैं हर पर हरिनाम करते करना समस्त इच्छा के तो त्याग करो पूर्ण श्रद्धा भी करो श्रद्धा के विदेशन जब हम की जाए तो हम शिशन भजन हमार पक्ष समान है श्रद्धा ही प्रथम अवस्था शरणागति ही नहीं हमारे अरे तपन हम पर कोई दोष नहीं ग्रंथदास ने चक्रवर्ती महोदय लिखा पश्चात भजन में सब प्रश्न तत्पर के साधक प्रारंभिक अवस्था को कुंभक भई सामयिक मानसिक दशा का वर्णन करता है जैसे पाठार्थ काल में छात्र मनीमन सुनता है मैं सबके लिए प्रशंसक या पंडित हो गया छात्र समझता है नवीन उत्साह के साथ विद्या पाठ में उद्यमता देखा जाए विद्वता सहायता विषय में उसका उद्यम देखा जाता है उसी प्रकार भजन के प्रारंभ काल में वही लोग प्रारंभ किया और मन पर ये सबसे प्रसन्न सही है कनिष्ठ मध्य आरम्भ कर उस नवीन साधक के हृदय में कौतूहल के साथ में भजन सामयिक नवीन उत्साह देकर एक दशा उत्साह अनिश्चितता भजन हरे कृष्ण राम की प्रणाम
Vishwanath Chakravarti Thakur describes this day, the new sound. state his mind. When the Sarat first comes to Gurudev, Gurudev gives him Harinam. You should chant 16 rounds a day. But from that day, the Sarat begins chanting 64 rounds. Whoever he meets, he says, chant Harinam, you will achieve all perfection. He goes on day and night, Harinam, Hare Krishna. Then some headache comes, Hare Baba. Then he cannot do some sickness, he feels a little weak. That time Gurudev announces him, oh, you are not doing bhajan properly, why you are not doing the faith? Then his mind becomes disturbed. In the beginning, he thinks, I am the greatest. And his enthusiasm is also like that. Completely new and immature. At this stage, he has no surrender to Guru. If he has no surrender, then how he can perform bhajan? Therefore, this is the first stage of initiative bhajan.
Yesterday, some accident
Every hour tomorrow at 3:30 in the afternoon, there will be a seminar given by Srimati Umadevi for all the young ladies how to learn something about Vaishnava etiquette, Sadachar. All young ladies, I invited all of you to hear from Srimati Umadevi. Ki Jai!
Hare Krishna!
Hare Krishna! Wherever you go, we have to pay some money to pandas. So don't give your money here and there. Everywhere we are going, we are collecting some money and giving to them. So you can give Tirtha Maharaj, Van Maharaj, Govinda Maharaj, others. They collect money from you for everywhere. Don't go, don't give any donation. Pass away to pandas. Hare Krishna.
Hare Krishna. Grace. Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj and all the and for Sri Srimad Vinodhi Hari, Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the assembled devotees. Today we will continue to present the glorious life and teachings of Srila Bhakti Prajnana Keshava Goswami Maharaj.
I have uselessly wasted my entire life in court proceedings. My birth has become fruitless because I have not performed Hari Bhajan. Human life can only be successful through the worship of Sri Hari, but I have distanced myself from it. Now, my old age, my senses are becoming I cannot understand anything properly, and death is imminent. I can only pray at the lotus feet of the Vaishnavas and Sri Bhagavan for their causeless mercy that they may bestow upon me the priceless gift of Bhagavad Bhakti.
Thank you, Prabhu. In conclusion, I would like to ask Sri Vinodhi Hari Ramchari Prabhu if he would like to speak something.
The hidden purport of all Shastras is Bhagavad Bhakti. Of all forms of Bhagavad Bhakti, the Prema Maya Bhakti, supreme worshipful deity. And his abode, Shri Vrindavan Dham, where he performs his pastimes, is as worshipful as Krishna himself. Of all forms of worship of Krishna, the most pleasing is that which is performed by the gopis of Vrindavan. Srimad Bhagavatam is the spotless evidence of this, and Krishna praying is the supreme goal of life. This is the teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In the Shastras, there are also examples of court proceedings. I think that this is the best form of Bhagavad Bhakti. It is just that people do not know how to perform them. For such unfortunate souls, the opportunity to attain Bhagavad Bhakti is very remote. We are in the party of the most worshipful Srimati Radhika, and our special seva is to arrange for her meeting with Krishna. Once, Sri Krishna went to meet with Chandravali in Garhpunj. Sri Radha's Sakis made up some excuse to extricate him from there and brought him to Sri Radha's Kunj at Sri Radha Kunj. In front of Kunjeshwari Sri Radhika, he was made to write, "I am the servant of Radhati, and I will never leave her to go elsewhere," and to sign that note. A few days later, compelled by his nature, Krishna neglected his promise and again went to meet with Chandravali. Sri Radha's Sakis, seeing him opposed to Sri Radha, filed a court case against him. Krishna wasn't present there at that time, so they issued a court decree and then went to show him. Thus, he was bound to comply. In this way, they arranged a sweet meeting between Sri Radha and Krishna by means of a warrant. Birth in a high family, education, wealth, and beauty are not required for Krishna Bhajan. On the contrary, Krishna Bhajan is the birthright and qualification of every living entity. Thus, it is necessary to perform Krishna Bhajan.
Thank you.
contains deep philosophical
siddhanta.
Even great sages struggle to understand its meaning.
Aren't you going to say something?
Prabhu, you can ask me any question from the book.
What is the best method for understanding the Absolute Truth?
In Tattva Sandharva, Sarva Sambhadi, it is stated, Shabde Eva Mulam Pramana. If one carefully examines the 10 types of evidence, namely direct sense perception, inference from generalized experience, revealed knowledge, evidence from previous rishis and sages, analogy, inference from circumstances, understanding something by its non-perception, speculation, signs, and traditional instruction, one can understand that all of them are contaminated by the four defects of material life: illusion, imperfect senses, cheating, and mistakes, with the exception of shabda, or revealed knowledge. Thus, shabda is superior, being free from the four defects. Therefore, shabda is the root of all evidence.
After some years, when Vinod Bihari was sleeping. Srila Prabhupada came to him in a divine dream.
Vinod, until now, you have not taken sannyas, and this is jeopardizing my preaching mission. If you don't, our preaching mission will be stopped. Today, I will give you sannyas.
This is Gurudev's dear godbrother, Sri Alai Charanarvinda Prabhu.